हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा वेद व्यास जी का संवाद, श्लोक नंबर 17। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, प्रेमाति भरने भिन्न पुलकांगोति निर्वृत, आनंद संप्लवी नीलो न पश्यम उभयं मुने। प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत, आनंद संप्लवी नीलो न पश्यम उभयम् मुने प्रेमातिभरनिर्भिन्ना पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवि नीलो न पश्यम् उभयम् मुने प्रेमातिभरनिर्भिन्ना पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवि नीलो न पश्यम् उभयम् मुने प्रेमातिभरनिर्भिन्ना पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवि नीलो न पश्यम् उभयम् मुने शब्दों का अर्थ प्रेमा प्रेम अतिभर अत्यधिक निर्भिन्न विशेष रूप से विभेदित पुलक प्रसन्नता की अनुभूति अंग शरीर के विभिन्न अंग अति निर्वृत्त अर्थात पूर्णतया अभिभूत होकर आनंद आह्लाद के संप्लवे समुद्र में लीन मग्न न नहीं पश्यम देख सका उभयम दोनों को मुने हे व्यासदेव अनुवाद हे व्यासदेव उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित होता आनंद के सागर में मग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झांकी हमें नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। अतः दिव्य आनंद की अवस्था में इंद्रियां इतनी उत्कंठित हो गई थी कि वे भगवान की सेवा कर सकें। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं मन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जैसा कि हम नारद मुनि के विषय में पढ़ रहे हैं, कल हमने सुना नारद मुनि जब बहुत थक गए, जंगलों में वीरानों में शहरों में हर जगह से गुजर रहे थे, तो जब उनको बहुत ज्यादा भूख और प्यास सताने लगी तो एक नदी में उन्होंने स्नान किया और पवित्र जल का सेवन करके अपनी थकान को खत्म किया। उसके बाद एक वीरान जंगल में पिप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अंतःकरण में परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगे जैसे कि उन ऋषियों ने उन्हें बताया था, उनसे जैसे सीखा था। और ज्यों ही नारद मुनि बता रहे थे कि ज्यों ही मैंने अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा तो मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल पर तुरंत प्रकट हो गए। अब हृदय के अंदर भगवान की अनुभूति हो रही है नारद मुनि को। वास्तव में भक्तों, ये सबसे बड़ी अनुभूति है जब हृदय के अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है। वास्तव में अगर सत्य में अगर कोई जीवन का लक्ष्य है तो उसी लक्ष्य को प्राप्त, यही लक्ष्य है कि हम भगवान का साक्षात्कार करें। लेकिन यह भगवान का साक्षात्कार हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां जो हैं वो भगवान के दिव्य स्वरूप को कभी भी नहीं देख सकती। उनके लिए इंद्रियों को दिव्य होना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिय, कि भगवान का केवल ना ही भगवान का रूप बल्कि भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाए, ये सब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से कभी भी न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ना ही हमारी भौतिक आंखें भगवान को देख सकती हैं, ना कर्णों से भगवान के शब्दों को श्रवण कर सकते हैं और ना ही जिह्वा से भगवान के दिव्य नाम को हम ले सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि फिर हम कैसे, जब हमारे पास तो इंद्रियां फिलहाल तो यही है, तो हाउ टू अप्रोच भगवान को, कैसे अप्रोच करेंगे भगवान के साथ, अपना संबंध कैसे जोड़ेंगे जब भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान की संकल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसी श्लोक में कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव सुफूर्तितः। सेवान मुखे ही जिह्वादो, इसका मतलब यहाँ पर बताया जाता है, हाउ टू अप्रोच कृष्ण by devotional service which begins with tongue, सेवान मुखो ही जिह्वा दो, कि हमारी जो जिह्वा से जो सेवा स्टार्ट होती है। देखो जिह्वा के दो कार्य होते हैं, एक तो ग्रहण करना प्रसाद खाना और दूसरा जिह्वा से हम बोलते हैं, ये दो काम। और सेवा जो है वो स्टार्ट होती है जिह्वा से। सबसे पहले जिस समय हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसके बाद भगवान के पवित्र प्रसाद को, जैसे हम प्रसाद का सेवन करते, जैसे जीव क्या करता है जब इस संसार में आता है, उसी समय से भगवान के साथ उसका संबंध, जो इटर्नल संबंध है, उसको भुला देता है और क्या करता है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल जाता है और संसार में आकर पहले पहले भोग करने की वांछा करता है, है ना। छोटा सा बच्चा पैदा होता है और भले ही भगवान को अभी अभी प्रॉमिस करके आया है कि मैं बाहर जाकर क्या करूंगा, तुम्हारे नाम का सुमिरन करूंगा, तुम्हारी भक्ति करूंगा, परंतु जीव की इच्छा यहाँ पर आकर वो प्रॉमिस भूल जाता है संसार में आते ही, और भगवान के साथ कॉम्पिटिटर बन जाता है। क्या करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, भोग वांछा करे, मैं कैसे आनंद लूं और अपनी इंद्रिय को तृप्त करूं। फिर उसे शुरू में छोटा होता है, उसको पता नहीं होता दूसरी इंद्रियों को तृप्त करना, केवल जिह्वा को तृप्त करना जानता है केवल। उसको तो किसी की आवाज भी समझ में नहीं आती है और किसी को पहचानता भी नहीं है, आंखों का, कान, नाक का और दूसरी त्वचा, दूसरी स्पर्श इंद्रिया वगैरह का उसे ज्ञान नहीं होता, लेकिन उस समय भी क्या सोचता है कि मैं कैसे माउथ में कुछ जाए, मेरे भूख लग रही होती है, आते ही रोना शुरू हो जाता है, मुझे आनंद चाहिए। और आनंद क्यों वो मांग रहा है? क्योंकि कृष्ण से अलग हो गया, अब रो रहा है, तो आनंद रो कर आनंदित होना चाहता है, और हम उसे शुरू से ही भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट कराना चाहते हैं। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, फिर क्या होता है? जब वो इच्छा करता है तो शास्त्र कहता है निकट स्थित माया तारे झपटिया दरे। अब भगवान से तो दूर हो गया, अब माया है निकट ही खड़ी है। जैसे ही जीव भोग की इच्छा करता है उसको झपट कर अपने झपेट में ले लेती है ना माया, क्योंकि श्री कृष्ण है सूर्य सन, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण ताहर नहीं माया अधकार, और माया का अधिकार कहाँ नहीं है? जहाँ कृष्ण है। लेकिन जीव जैसे ही कृष्ण को छोड़कर इस भौतिक संसार में आनंद भोग वांछा करे, आनंद की आनंद को तलाश करता है, सोचता है, खोज करता है, तो फिर माया उसे अपने शिकंजे में ले लेती है, और फिर जन्म जन्मांतर तक हम उस भौतिक आनंद में आध्यात्मिक आनंद की खोज करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चैवतम चरवान माति न कृष्णे परतस्ततो वा मिथो विपत्तित गृह प्रधानम् आद्यन्तवादो विशतां विसर्तम् पुनः पुनः चैवितं चैवानाम्। अर्थात के जिस प्रकार हम देखते हैं गन्ना होता है ना, गन्ने में से पूरा रस निकालते हैं, फिर पूरा जूस निकल जाता है, फिर क्या बचता है? गन्ने का जो छिलका बचता है उसको कितना भी चूसे यदि कोई, उसमें से आनंद प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसी तरह से भौतिक जगत में जीव कितना भी कोशिश करे उसे आनंद प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि ये आनंद तो मतलब चूस चूस के कई जन्मों तक उसने खत्म कर दिया है। घर बार का, इंद्र तृप्ति का जो भी आनंद है, इसमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी भी मिलेगी नहीं। चाहे आप हमें जब गरीब होते हैं तो कैसा लगता है, थोड़ी अमीर होते तो फिर आनंद आएगा। इस संसार में अगर किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती तो क्या सोचता है, मुझे गर्लफ्रेंड प्राप्त हो जाएगी तो संतुष्टि मिलेगी, फिर बोलता है अगर उससे शादी हो जाएगी तो संतुष्टि मिलेगी, और फिर ऐसे करते करते भले कुछ भी सोचता है ना जीव, उसे प्राप्त होने के बाद कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। अरे इस बात को छोड़ो, इस संसार में क्या प्राप्त करोगे? यदि स्वर्ग में भी चले जाओगे ना तो स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करने को मिलता है, लेकिन वहां पर जाकर भी संतुष्टि नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, ये तो कोई कोई ऐसे सोचेंगे कि ये तो सिर्फ कहने की बात है, संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं। इतने सारे लोग को जब मिला है तो संतुष्टि है, तभी तो वो खोज कर रहे हैं सब। नहीं, अभी तक खोज कर रहे हैं इसका मतलब मिला नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ कर देख लें, जिनके पास है, जिनके पास जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी में किया है, उससे अगर पूछेंगे क्या अपने धन से, अपने भौतिक रिलेटिव्स के साथ, और या फिर भौतिक जितने भी तुम्हारे पास वस्तुएं हैं उन साधनों से आप संतुष्ट हो, 100% जवाब ना आएगा। अगर वो भक्त नहीं है तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अरे इस भौतिक जगत की तो क्या बात करनी, अगर स्वर्ग का राजा इंद्र भी बना दिया जाए ना आपको, तब भी संतुष्टि नहीं होगी। अब स्वर्ग में साधारण प्राणी को कितना भोग का, इंद्रिय तृप्ति का कितना सामग्री मिलती है, उसमें उससे करोड़ गुना ज्यादा वहां के राजा को मिलता होगा, है ना, क्योंकि स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। लेकिन उससे भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, तभी तो वो आया इस धरती पर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ कुकर्म करने के लिए। अगर संतुष्ट होता तो कहीं और क्यों देखता? संतुष्टि संभव नहीं है, केवल अगर संतुष्टि कहीं पर है तो केवल और केवल भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करने के करके ही जीव संतुष्ट हो सकता है, बाकी किसी भी वस्तु से संतुष्ट होना संभव नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कर्मणा मनसा गिरा अखिल स्वापी अवस्थिता अवस्थासु, यानी कि जब जीव मन कर्म और वचन से भगवान की भक्ति में लग जाता है तो क्या होता है, जीवन मुक्त सा उच्यते, फिर उसे मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यदि जीव अपने इसी जन्म में अपने मन कर्म और वचन के साथ भगवान की सेवा में जुड़ जाता है तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है। जैसे हम महाराज अम्बरीश के विषय में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को मार्जन करने में, अपने नेत्रों को भगवान के दर्शन करने में, अपने पैरों को भगवान की तीर्थ यात्रा करने में, अपने कर्णों को भगवान के श्रवण शब्द को, भगवान के जो भी भगवान की कथाएं हैं उनको श्रवण करने में, अपने जीवा को प्रसाद का आस्वादन करने में और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में लगाया तो वो संतुष्ट हो जाए। जीव जब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वो अपनी कर्म इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाता। तो इससे क्या कहा, सेवा मुखो ही जीवा, तो शुरू करो अपनी जीवा से। सबसे पहले भगवान की कथाओं का कीर्तन करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो और भगवान के प्रसाद का सेवन करो। कर्णों से शुरू करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो। तो इस तरह से क्या होगा, जीव संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जीव तो यहाँ पर आकर अपनी संतुष्टि को कुछ और ही समझ गया है और समझता है कि भौतिक वस्तुओं से उसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम परम भावम। वो मूढ़ हैं, सबसे बड़े बेवकूफ हैं, वो इस संसार में आ जाते हैं परंतु फिर भी जब मैं मनुष्य तन लेता हूँ तो मुझे जान नहीं सकते। भगवान ने उसे गधा का गधा, पता नहीं गधा क्यों कहा, दूसरे भी तो जानवर है, मूढ़ा मूढ़ा का मतलब गधा भी एक तरह से होता है, तो क्यों कहा, कुत्ता क्यों नहीं कहा, बिल्ली क्यों नहीं कहा, ऐसा सवाल आता है। मैं सुबह लेक्चर सुन रही थी तो उसमें आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, भगवान को दूसरा जानवर भी बोलना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर भगवान ने गधा और शास्त्र में गधा और सुअर का है ना इस तरह से मिसाल आई। तो मूढ़ा गधा को बोल, गधा क्या करता है, जो धोबी होता है वो सामने गाजर टांगता है और फिर गधे को बोलता है चलो चलो, तो गधा जो है वो जोर जोर से आगे जाता रहे जाता रहे जाता रहे, लेकिन फिर भी वो गाजर तक तो पहुंचता ही नहीं। धोबी घाट आ जाता है, कपड़े धोता है धोबी, वापस से गीले कपड़े रखता है और गाजर वहीं पर टांग देता है और फिर वो और भी तेज तेज भागता है कि इस बार ही तो मुझे गाजर मुंह में डालना ही है डालना ही। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ये मैं खाम खाम इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज रोज आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फायदा तो हो ही नहीं रहा, प्राप्ति तो कुछ हो ही नहीं रही। तो उसी तरह मनुष्य क्या है, सुबह से लेकर रात तक संतुष्टि के लिए, जीवन से लेकर मृत्यु तक संतुष्टि के लिए प्रयत्न करता रहता है। उसको दिखता है कि सामने आनंद है आनंद है आनंद है, नहीं मिलता तो भी छोड़ता नहीं है उसको कि नहीं चलो ठीक है। गधा ये नहीं सोचता कि मैं छोड़ देता हूँ, नहीं मिल रहा है, रोजाना सोचता हूँ लेकिन मिल तो नहीं रहा। तो इसने कहा कि अगर कुत्ता या बिल्ली उसकी जगह पे होते ना तो क्या करते, वो किसी भी तरह से झपट के उसको ले लेते, झपट के उस गाजर को ले लेते। अगर नहीं झपट सकते तो क्या होता, वो कहा बस बोलते कौन इतनी मेहनत करता है, जैसे लोमड़ी बोलते छोड़ो ना अंगूर खट्टे हैं। लेकिन गधा जो है वो सोचता ही नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं, वो क्या कैसे भी करके प्राप्त करना, आज नहीं कर सका कल कर, नहीं कर सका परसों। तो जीव मनुष्य ऐसा ही है, पूरी जिंदगी आनंद प्राप्त करने के लिए सोचता रहता है सोचता रहता है, लेकिन उसको आनंद प्राप्त होता ही नहीं है। क्योंकि आनंद तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम भगवान के भक्त, जैसे नारद मुनि ने जिस तरीके से आनंद को प्राप्त किया, नारद मुनि आज अपने आनंद के विषय में बता रहे हैं कि जब मैंने उन महात्माओं के मुखारविंद से जो सुना था उसी के अनुसार मैंने ध्यान किया और हृदय में भगवान के पवित्र हृदय से, हृदय के नेत्रों से भगवान का दर्शन किया मैंने अपने हृदय के अंदर, उसके बाद क्या हुआ, वो कहते हैं प्रेमातिभर निर्भिन्न, कल भावान भाव के विषय में बताया था कि क्योंकि हृदय के अंदर बहुत सारे भाव उत्पन्न हो रहे थे, भगवान को प्रसन्न करने के भाव, भगवान के पवित्र नाम का जप करने के, और आज कह रहे हैं कि मेरे हृदय के अंदर प्रेम की सुध, जैसे हमने कल पढ़ा अदो श्रद्धा तथा साधु संग, और आखिर में भाव के बाद क्या है, प्रेम की स्थिति। और जब प्रेम उमड़ने लगा हृदय से, देखो नारद मुनि ने क्या किया, सिर्फ ये दो काम, सेवान्मुखे ही जीवा दो, भक्तों का संग किया, उनसे श्रवण किया, भगवान के पवित्र नाम का जप किया, और उनका जो उच्चिष्ट प्रसाद है वो खाया, और उससे उसके बाद उनके हृदय में इतना भाव, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि प्रेमाधिभर निर्भिन्न पुलकांगो निर्वृत, पुलक अंगो यानी पूरे शरीर में प्रत्येक अंग में पुलक होने लगा, रोमांचित हो रहे थे, ये प्रेम की हमने कल सात विकार पढ़े थे, स्तंभित होना, कंपन होना, स्वर भंग होना, और पुलक होना, श्वेद आना, ये सब पढ़े थे। तो इसमें आज नारद मुनि के अंग अंग में रोमांच हो रहा है, भगवान के पवित्र नाम का वो जप कर रहे हैं, और प्रेम की स्थिति ऐसी हो रही है कि उनके अंदर रोमांच का विकार उत्पन्न हो रहा है। और आगे कहते हैं आनंद संप्लवे लीना, मैं जैसे जैसे जप कर रहा था भगवान के लिए, मेरे हृदय में प्रेम अति आघार हो रहा था, और मेरे मुझे रोमांच हो रहा था, मेरे रोम खड़े हो रहे थे, और मुझे आत्यंतिक आनंद प्राप्त हो रहा था। आनंद संप्लवे लीना, वास्तव में भक्तों इससे अधिक आनंद और कभी कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के साथ जब भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनको हृदय में, और भगवान को देखकर उनको कैसा आनंद, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुख तथा उत्कंठ उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूति की कोई सांसारिक तुलना नहीं होती। अब कोई कैसे बताए कि उनको कैसा आनंद प्राप्त हो रहा होगा, है ना, कोई तुलना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि जिस तरह से हम किसी प्रेमी को देखते तो हमें आनंद हो रहा है, भौतिक वस्तुओं से वैसा कभी आनंद होता ही नहीं है, तो फिर कोई तुलना नहीं है। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है, ऐसे आनंद की। अब पता ही नहीं है कि कैसे उसको, कैसे एग्जाम्पल देकर बताएं कि उनको कैसा आनंद हो रहा है। लेकिन नारद मुनि चरपा जी बोलते हैं ऐसी झांकी नारद मुनि के शब्दों में मिल रही है कि शरीर तथा इंद्रिया के प्रत्येक अंग का अपना विशेष कार्य होता है, और जब भगवान का दर्शन हो रहा होता है, जब भगवान का दर्शन होता है तो प्रत्येक इंद्रिय क्या सोचती है कि मैं इस भगवान, अब मैं भगवान की कैसे सेवा करूं, भगवान की सेवा करने के लिए सारी इंद्रियां आतुर हो जाती हैं, रोमांच हो जाता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती है। अब क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, तो फिर क्या होता है, इंद्रियां भौतिक माया की सेवा करने के लिए आतुर है। लेकिन जब मुक्त अवस्था हो जाती है, माया से हमारा पूरा ध्यान हट जाता है, भगवान के चरण कमलों में ध्यान लग जाता है, फिर इंद्रियां सक्षम हो जाती हैं भगवान की सेवा करने में, और इस तरह अतः दिव्य आनंद की अवस्था में इतनी उत्कंठित हो जाती है कि भगवान की अच्छे से सेवा कर सके। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा होने से नारद अपने आप को तथा भगवान को देखने में खो गए, देख रहे थे परंतु यहाँ पर तो श्रील नारद मुनि कहते हैं ना पश्यम उभयम मुने, हे मुनि मैं देखते हुए भी मुझे आंसू आ रहे थे मेरे आंखों में, और हम मैं इतना खो गया। देखो कह रहे हैं आनंद संप्लवे लीना, मैं इतनी अगाढ़ आनंद में लीन हो गया, ना पश्यम उभयम मुने कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो इतना आनंद में मग्न थे। आनंद संप्लवे लीना, आनंद के समुद्र में जैसे अब भगवान का साक्षात्कार हुआ है, एक छोटा सा बच्चा जिसका कोई सहारा नहीं और जिससे अपनी जिंदगी का कुछ पता भी नहीं है कि क्या करना है, और आज भगवान इतना उसके ऊपर कृपा, इतनी अनुकंपा कि साक्षात्कार हो गया भगवान का, उन्हें रोमांच हो रहा था, हृदय के अंदर आनंद हो रहा था, पुलकित हो रहा था हृदय, और भगवान सामने खड़े हैं लेकिन अपना आनंद को वो समा नहीं सक रहे हैं। भौतिक शब्दों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो इस दिव्य आनंद के विषय में कुछ कह सके। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, ना पश्यम उभयम मुनि, कि मुझे दिख ही नहीं रहा था, न मैं अपने आप को देख सक रहा था और न भगवान को देख सक रहा था, केवल और केवल आनंद और प्रेम की अनुभूति हो रही थी। तो यहाँ पर नारद मुनि ने अपने भाव व्यक्त किए। कल हम देखेंगे कि भगवान इतना अपना दर्शन देने के बाद क्या करते हैं। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।